ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवद्गीता।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 1 श्लोक संख्या 6 नहीं है 16 है। पूरा सुना करो। तमा इहमानं निरहंतं बुधं निराशिषं पूर्णं अनन्या चोदितं निर्णं शिक्षयन्तं निजवर्तं संसितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। तमीहमानं निरहंगत बुधं निराशिषं पूर्णमनय चोदितं निरशंक्षयन्तं निजवर्त संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। तमीहमानं निरहंकतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं निरशंक्षयतं निजवर्त संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। तमीहमानं निरहंकतं बुधं निराशिषं पूर्णमनय चोदितं निरशंक्षयन्तं निजवर्त संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। निरशंक्षयन्तं निजवर्त संस्थितं प्रभु प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम्। माताएं तमीहमानं
तमीहमानं
धन्यवाद। तम उसी भगवान को इहमानम हमारे लाभ के लिए कर्म करने वाले निरहंकतम जो बंधन अथवा लाभ की इच्छा से रहित है, बुधम ज्ञानवान को निराशिषम अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा ना रखने वाले को, पूर्णम जो पूर्ण है अतएव जिसे इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, अनन्य अन्यों के द्वारा चोदितम प्रेरित प्रोत्साहित निर्णय सारा मानव समाज, शिक्षयंतम शिक्षा देने के लिए जीव के असली पथ की, निजवर्तम अपनी निजी जीवन शैली, संसितम प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रभुम भगवान से प्रपद्ये प्रार्थना करता हूँ, अखिल धर्म भावनम जो मनुष्यों के समस्त धार्मिक सिद्धांतों अथवा वृत्ति परक कर्मों के स्वामी हैं। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की, भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण भौतिक इच्छाओं तथा विक्षोपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश करते हैं और इस प्रकार धर्म से धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि वह उनका अनुसरण करे। तात्पर्य, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि वे भगवद गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चले। भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सारांश है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करना किया जाए। इस संसार में राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहार गत उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और माता सीता के एकनिष्ठ पति बने रहे। अतएव आदर्श राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं। दरअसल लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अनंत भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जना। भगवत गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक। मनुष्य को उनका दृढ़तापूर्वक पालन भर करना होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्त की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं और स्वयंभू मनु हम सबों से अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका अनुसरण करें। स्वयंभू मनु मानव जाति के अग्रणी नेता हैं और उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ प्रदान किया है, जिसमें वे हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित है। और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशव धृतन नर शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे आदि आदि। स्वयंभू मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का, विशेषतः भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया, वैराग्य विद्या नज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिर तसम प्रपद्ये तुम प्रपद्ये। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें असली ज्ञान अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाली प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु में अवतरित हुए हैं। वे इसलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वे कृपा दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों के शरण लेता हूँ। चैतन्य चंदू नाटक 6-74। इस कलिकाल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर पाते, अतएव भगवान स्वयं ही लोगों की कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हरेक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है न तारे देश। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7-128। भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, मानव समाज को यह सिखाना कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में जिसमें कि मनवंतरों का चर्चा हो रही है कि किसके मनवंतर में भगवान के कौन से अवतार हुए, लास्ट टाइम मुरली कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से हर एक मनवंतर की भगवान के अवतारों का भी वर्णन किया था, किस मनवंतर में कौन सी कथा चल रही है। और कई बारी कई कथाओं में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, तो मनवंतरों के कारण या कल्पों के कारण भी हो जाता है। तो स्वयंभू मनु जो है ये शिक्षा दे रहे हैं, वो लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और अपना सब कुछ त्याग कर उन्होंने तपस्या करी और फिर ये शिक्षा भी दे रहे हैं साथ ही साथ। शंभु मनु, और ये मनु जो है मनुष्य जाति के अग्रणी हैं। और उस दिन हमने एक वीडियो देखा, उसमें कई बार जो दूसरे धर्म के लोग हैं जब वो हमारी गीता भागवत पढ़ लेते हैं तो उनको काफी ज्ञान मिल जाता है, काफी चीजें क्लियर हो जाती है उनकी। तो एक व्यक्ति की क्लियर हो गई, वो भी किसी संस्था का बहुत बड़ा मुस्लिम संस्था का बहुत बड़ा अधिकारी था। तो जब उनका ज्ञान क्लियर हुआ तो उनको लगा, अरे ये सब तो वही लिखा है जो हमारी कुरान पाक कुरान इंगित करती है जिन चीजों को, इसमें भी वही लिखा है ना, यही बाइबल में लिखा है। एडम एंड ईव, उससे सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोल दिया। उसी तरह पार्वती शिव जी को भी भगवान ने कहा वो करो क्या, प्रोगेनी बढ़ाओ, या फिर सत्यरूप और स्वयंभु मनु इन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, उनका नाम है भूल गया किस नबी ने क्या ने, हाँ आदम और अव्वा, इनसे सारी क्या हुई, सृष्टि हुई। तो उन्होंने बोला नाम अलग अलग है लेकिन हुई तो एक ही है, लेडी और जेंट्स से सब कुछ वहीं से आया है। तो फिर हमारे पूर्वज भी क्या हैं, हमारे भी भगवान जो हैं वो कौन है, शिव और पार्वती हैं। बस फिर क्या था, सब लोगों को समस्या होगी, किनको, उनके धर्म के लोगों को जिन्होंने उस ग्रंथ के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। ये कैसे बोल दिया आपने, हमारे तो अलग है तुम्हारे अलग है, और उनकी आलोचना होने लगी। ठीक उसी प्रकार थी जैसे कि हमारे सूरज अलग है, उनका सूर्य अलग है, उनका सन अलग है ना। तो अब समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो कुछ आलोचना हुई, टीवी वीडियो पर चली चीजें, लेकिन फिर ज्यादा उसका प्रचार नहीं किया गया। तो जब कोई व्यक्ति अपने वेल से बाहर निकलता, अपने कुएं से बाहर निकलता है ना, फ्रॉग इन द वेल है ना, तो जब तक उसको लगता है मैं यहां हूं तो बहुत पानी है ना, स्विमिंग कर सकता हूं, बैक स्ट्रोक कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं है ना। लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकल के समुद्र की एक छलांग लगाकर आता और देखता है इतना पानी, और जब वापस आके बताता है तो सबको लगता है नहीं नहीं हमारा कुआं सबसे बड़ा है जगत में, देखो कितना डीप है, कितना पानी है, तो उसको अपने ही अच्छा लगता है ना। तो वो जो दूसरा बेचारा आया है वो बताने की भी कोशिश करता है, समुद्र में तो ऐसे कितने कुएं समा जाए, कितने कुओं का भरण पोषण हो जाए, फिर भी समुद्र का पानी खत्म नहीं हो सकता। तो एक ब्रॉड माइंडेडनेस होती है, एक नैरो माइंडेडनेस होती है। तो नैरो माइंडेडनेस मतलब व्यक्ति जो है संकीर्ण मानसिकता के साथ अपनी ही स्थिति को सुप्रीम मानता है और समझ नहीं पाता, अपने विचारों को खोलता नहीं है जब। और इस प्रकार श्री श्री राधा रघुवर भगवान कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और इस प्रकार कुंठित रहता है, उसके अंदर कट्टरता आ जाती है और वो हिंसक भी हो जाता है, कई तरह समस्याएं आती हैं। तो शास्त्र सारे इस प्रकार की हम शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई पढ़े तो बहुत अच्छा उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कल हम रात को जिस टैक्सी में आ रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था शहनवाज, तो हमने उससे भी यही बात करी, उसको भी 5-7-10 मिनट में समझाने का प्रयास किया तो वो समझ भी गया। और उसने, हमने उसको हरे कृष्णा बोला तो उसने हरे कृष्णा बोला, और फिर हमने उसको ये सब समझाया कि किस प्रकार भगवान एक हैं, भगवान ने सारी सृष्टि की है, उन भगवान को कोई भगवान बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई अल्लाह शब्द इस्तेमाल करता है, कोई गॉड बोलता है। तो बहुत अच्छे ढंग से समझा, और उतरने पर उसने सबको हरे कृष्णा किया। तो कितना अच्छा लगे कि सब समझ जाए इस चीज को। तो पूरे संसार में जो झगड़े लड़ाइयां और जो लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं तो कितनी जल्दी बंद हो जाएं, सारे इतने बड़े मॉल में आ जाएं सारे, है ना अपनी छोटी छोटी दुकानें बंद करके, है ना। प्रभुपाद ने एक ऐसा मॉल बनाया जिसमें सारी दुकानें है ना, ऐसा कह सकते हैं फिर। लेकिन नहीं, क्योंकि चलानी है तो बतानी नहीं है, इसलिए फिर अपने उन सब चीजों को लोग चलाते रहते हैं और संसार में झगड़े कलेश होते रहते हैं। तो यहां पर इस विशेष इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे प्रभुपाद ने बहुत बड़ा प्रपट दिया है, और भगवान के विशेष अवतारों की चर्चा की है कि भगवान किस प्रकार लोगों को ये समझा रहे हैं जो इस अनुवाद में लिखा है। इसलिए प्रभुपाद ने 3 विशेष अवतारों की बात करी। भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षोभों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो भगवान के कुछ विशेष गुण बताएं इस संसार को लेकर, कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते हैं, और उन कर्मों को करते हुए क्या दिखाते हैं, रहते सदैव पूर्ण ज्ञान में लेकिन उन कर्मों को भोगने की इच्छा नहीं करते। एक इस प्रकार जैसे आसक्त व्यक्ति होता है उस प्रकार नहीं कर एक आदर्श जीवन जीकर दिखाते हैं, और उनके जो गुण हैं वो सदैव बरकरार रहते हैं। फिर भी वे कह रहे हैं आगे, वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं। अब भगवान तो उनसे बढ़िया आचरण किसका होगा, तो भगवान अपने ही कर्मों को अपने ही कर्तव्यों की ही शिक्षा देते हैं कि ऐसा करिए, जन समुदाय को कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता में भी पूरा का पूरा चैप्टर में, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में तो ज्ञान की विशेष चर्चा की है, तो भगवान यही कहते हैं कि लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रहती है, किस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, वो अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, और उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करणीय नहीं होता। अब ये क्वालिटीज भगवान जो बता रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की, तो ये क्वालिटीज भगवान की भी है ना। जीव के अंदर वो पूर्ण गुण जो है पूर्णता विकसित नहीं होते, इस वजह से कई बार संघर्ष करता रहता जीव, लेकिन बता रहे हैं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके साथ ऐसा होता है। और अपने नियत कर्मों करने की भी उसके पास जरूरत नहीं रहती, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रहता है, उसे भी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो दिव्य धरातल पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म भगवान की प्राप्ति होती है। फिर भगवान एग्जाम्पल दे रहे जनक महाराज का, राजा होते हुए क्या करा उन्होंने, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। नियत कर्म मतलब भगवान ने कहा चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष, तो ये चार वर्ण और आश्रम की जो मैंने स्थापना करी है उसका उद्देश्य क्या था, कि लोग अपने कर्तव्यों का, नियत कर्मों का, जिस भी वर्ण और आश्रम में वो है उसका पालन करे, और उतना करेगा अगर नियत कर्मों का पालन करेगा तो उसमें भी इसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपना नियत कर्म छोड़कर, आश्रम वर्ण आश्रम छोड़कर वो दूसरे का कुछ कर्म करने का प्रयास करता है तो क्या होगा, भया हुआ है, उससे समस्या शुरू हो जाएगी। अपने कर्तव्य को व्यक्ति कोई दोषपूर्ण भी कर रहा है तो भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, चाकू कांटा सब कुछ रखता है उसके हाथ में, है ना, सीजर भी रहती है, ऑपरेट करता है वो, और एक मोची के पास भी ऐसे कुछ सामान होता है सारा। अगर मोची बोले अरे भाई जो सामान मेरे पास है वो सामान इसके पास भी है, ये कहीं स्कूल में कॉलेज में जाके पढ़कर सीख कर आया सब, मैंने तो अपने पापा से सीखा है ना, फैमिली ट्रेडिशन है, तो ये इसके पास भी सुई धागा होता है, मेरे पास भी सुई धागा है, ये भी काट पीट करता है, मैं भी काट पीट करता हूं, तो ठीक है क्या करते हैं, अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो एक पेशेंट मैं भी चेक कर लेता हूं, है ना। तो अपना कर्तव्य छोड़कर वो किसका काम कर रहा है, डॉक्टर वाले का काम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, वो फाड़ भी सही देगा, सील भी सही देगा, लेकिन अंदर क्या करना था वो नहीं जानता वो, है ना, वो उसकी आत्मा बाहर निकाल देगा, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे अपने नियत कर्म को करें, जिस वर्ण में जिस आश्रम में व्यक्ति है अगर वो दोषपूर्ण भी कर रहा है उसको करे, भगवान प्रेरित नहीं कर रहे कि दोषपूर्ण ही करो, अगर गलती हो जाती है तो भी वहीं रहो, लेकिन क्या करो, नियत कर्मों को करो। राजा जनक जैसे लोग अपने नियत कर्मों को कर क्या हो गए, सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए जब लोग गुरुकुल में आते थे ब्रह्मचारी आश्रम में, तो गुरुजन का क्या कर्तव्य होता था, वो उनकी वृत्ति देखते थे, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो कलयुग में सारे क्या है, PhD है, जन्म से सारे क्या हैं, शूद्र हैं, और उनकी वृत्ति देखी जाती है, किस वृत्ति के लोग हैं, है ना। तो क्या देखा जाता है कि किस वृत्ति के हैं, क्या इसकी टेंडेंसी है, साइकोफिजिक नेचर क्या है, और उसके अनुसार गुरुजन ये धारण समझाते हैं कि हाँ मैंने देख लिया इसकी वृत्ति सेवा करने की ज्यादा है, ये तो कलयुग के ब्राह्मणों ने सब गड़बड़ कर डाली। और ये ब्राह्मण ज्यादातर वो थे कौन, जो युद्ध क्षेत्र में से भागे, जो अटैक्स होने से भागे और जिनको श्राप मिला, कहते हैं ना वो राक्षस वो असुर ब्रह्म योनिषु, कलयुग में ब्रह्म योनि में आ गए, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर आ गए। कई बार लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, कुल से ब्राह्मण, बचपन से ब्राह्मण है, जन्म लेके ही पैदा हुए हैं बोलते हैं कई लोग। तो अगर उनको ये श्लोक पढ़ा दिया जाए महाभारत का, भैया ये सब तो लिखा है उसमें कि उधर से जो भाग कर आए, जिनको श्राप मिला, वो असुर सारे कलयुग में कहां आ गए, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, तो उसका सारा अहंकार पानी पानी हो जाएगा। तो कई बार ये पिछले युगों के हिसाब से लोग कोशिश करते हैं अपने को सुप्री दिखाने का कि हम तो ब्राह्मण है जी, है ना, लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, है ना, उनका काम उनका धंधा इस प्रकार का है कि वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो बताया जाता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विजः, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है, वेद पाठात भवेत विप्र, वेद इत्यादि का अध्ययन करने से विप्र कहलाता है, और जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, उसका आचरण ब्राह्मण का है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग हैं वो इन सारे कार्यों को जानते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन पूर्व इस युग के पूरे पुराने ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने इसको सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दे डाला, है ना, कि हम तो ब्राह्मण हैं और तुम सब क्या हो, वैश्य और शूद्र और नारी, है ना, केवल ताड़न के अधिकारी, इस तरह कहकर सारे समाज को वो कर दिया। कभी स्त्रियों को भी लगता है कि हाँ नारी हमारे को बोल दिया ऐसा, है ना, गीता में भी बोल दिया, महाभारत में भी बोल दिया, तुलसीदास जी ने बोल दिया कि ताड़न के अधिकारी शूद्र, हमको वो बोल दिया, नारी बोल दिया। अरे तो क्या है, अगर आपको एक शब्द नारी बोल दिया आपको, तो शूद्र किसको बोला है, वो पुरुषों को बोला है, वैसे शुद्ध सबको निकृष्ट बता दिया उसमें। कई बार लोग इन्फीरियर फील करते हैं अपने में। और इस तरह से दूसरे वर्ग के लोगों ने अर्थात उच्च वर्ग के लोगों ने इस तरह से उनको देखना शुरू कर दिया कि तुम तो क्या हो, निकृष्ट हो। शूद्र की क्वालिटीज भी अगर देखेंगे तो आजकल मिलता नहीं है उस तरह का शूद्र जिस तरह से शास्त्रों में लिखा है। तो समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होगा तो वो भी अच्छा शूद्र नहीं होगा, ईमानदारी होती थी उसके अंदर, ईमानदार बजाई नहीं कोई, सत्यता होती थी उसके अंदर, कर्म करने की सेवा करने का बहुत सुंदर भाव होता था उसके अंदर। आज तो काम चोर है लोग, है कि नहीं, कहते हैं फिजिक्स का एक रूल है कि किसी भी सामान को उठाने से अच्छा है सरका दो, उसमें ज्यादा वो नहीं लगता है। लेकिन लोगों ने कर्मों के साथ करना शुरू कर दिया, जिम्मेवारियों के साथ, जिम्मेवारी उठाते नहीं है, क्या करते हैं, सरका देते है कि नहीं, तो कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है नहीं मालूम। तो इस प्रकार हो गया भाई। तो ब्राह्मणों ने सोकड़ अपने आप को महान समझ लिया, अब हमारे कुएं से अगर पानी पी लिया तो ये हो जाएगा, अगर हमारे यहां पर हुक्का पी लिया तो ये हो जाएगा, तो इस प्रकार की चीजें शुरू हो गई और उनको निकृष्ट मान दिया और वो बेचारे सब गड़बड़ हो गया, सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। लेकिन वैष्णवता क्या कहती है ना, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नाए, है ना, कोई शूद्र न्यासी विप्र कोई किसी भी वर्ग का वर्ण का हो, लेकिन अगर वो कृष्ण को तत्व से जानता है, जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा इस प्रपट में, अगर कृष्ण को तत्व से जानता है, भगवान का भक्त है, तो सही गुरु है, वो गुरु बनने का अधिकार है। यार देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको बस कृष्ण का उपदेश देना है, उसको बताओ देखो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण का क्या उपदेश है, उसका पालन करे और उसका जीवन सार्थक हो सकता है। तो यहां पर विशेषतः इस पर्टिकुलर वर्ष में क्या बताया कि कर्म करें अपने, भगवान ने कहा जो सॉरी जो मनु जी उपदेश दे रहे, और कहा कि क्या करो, शिक्षक बनो, दूसरे के शिक्षक बनो, और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि दूसरे के कर्म को ना करो, अपने नियत कर्म करो और उनसे अनासक्त हो जाओ, जैसे कि मैं ना हम लिम्पंती, भगवान कह रहे हैं मैं लिप्त नहीं होता, मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार में, इस संसार में मुझे कुछ नहीं लेना, मैं उदासीन की भांति देखता रहता हूं बस। अपने कर्म फलों से जब मैं आता हूं, अवतार लेता हूं, तो भी मैं अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं दिखाता अपने को। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे ही आचरण को देख के वो शिक्षक का एक काम करते हैं भगवान उसमें। तो हमारे साथ अलग होता है सिस्टम, भगवान ने तो कर दिया, लेकिन हमारी स्थिति एकदम अलग है। क्या है कि हम आसक्त हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा रूट कॉज देखें और पीछे की तरफ जाएं तो क्या कारण है। तो कारण ये दिखाई देता है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी, निकटस्थे माया झापटे धरी। कि जीवात्माओं ने भगवान से अलग होकर उनके विरुद्ध जाकर क्या इच्छा करी, भोग की इच्छा करी। अब भोग की इच्छा करी तो उस इच्छा के चलते भगवान ने उसको क्या किया, इस संसार में भेजा। अब इस संसार में जब जीवात्मा आती है, जब उसको देह प्राप्त होता है, मन बुद्धि अहंकार प्राप्त होता है, तो उसकी मेंटालिटी तो क्या होती है, किस लिए आया यहां पर, भोग की इच्छा से। लेकिन जब भोग करने लगता है, उसने देखा कि एक आदमी एक दुकान पे खड़ा होकर दही बल्ले खा रहा है, तो उसकी इच्छा है मैं भोग करूं, तो उसकी प्लेट पे जाके हाथ मारता है वो, तो उसको आवाज आती ठा, तो क्या हुआ, वो भोग करने की इच्छा से भोग करने गया और क्या मिला उसको, ठा। और फिर उसको लगा ये आदमी गलत है ना, फिर वो आगे गया, वो आगे जाता है तो कहीं पे भी बैठ जाता है, किसी के घर के आगे या घर के अंदर जाके सोफा लगता है अच्छा बैठा है, ऐसे बैठता है तो वहां पर भी आवाज आती है, उसको उधर से भी निकाल दिया जाता है, दुत्कार दिया जाता है। वो किसी पुरुष को या माता जी को देखता है तो उनको भोग की इच्छा से जागता है तो वहां पर भी आवाजें आती हैं बहुत सारी। तो समझ नहीं पाता है क्या कारण है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो वो बेचारा परेशान दुखी, वो ये देखता है कि दूसरा व्यक्ति इसका भोग कर रहा है उसको नहीं हो रहा, तो देखता है रीजन, देखता है ओके, ये जो जिसका भोग कर रहा है ये इसकी अपनी है, इसका घर अपना है, इसकी बीवी अपनी है और इसकी दही बल्ले भी अपने हैं, तो ये कहां से लाया, ये इसे दुकानदार से मांगा। दुकानदार ने क्या करा, उसने जब उसको कहा कि दो तो उसने कुछ दिया, उसको क्या दिया, महात्मा गांधी छपा हुआ नोट है ना, तो उसने करा ठीक है जी, तो ये नोट कहां से मिलता है जी, उसने पूछा, ये कहां से लाया कागज है ना। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भी अखबार फाड़ के ले जाए, सर मुझे भी दे दो कुछ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने बोला सर ये कागज मिलते हैं क्या करने से, काम करने से। तो फिर वो काम करता है, कर्म करता है या पढ़ाई करता है, उसको मालूम है वातावरण देखता है, वो सबको पैसे चाहिए है ना। वो क्या है, बाप बड़ा ना भैया, हाँ उसको मालूम पड़ जाता है संसार का नियम है, ये सारे संबंध भी इसको इसके केंद्र बिंदु है। तो धन कमाने की कोशिश करता है, तो देखता है कि मैं मेहनत करता हूं सुबह से लेकर शाम तक, तो कितनी मेहनत करवाते हैं, धक्का लगवाया, सामान उठाया, तब जाकर कुछ चंद रुपए दिए। और जब उससे वो दुकान में जाता है तो जो भोग करना चाहता है रख दिया पिज्जा पे हाथ, 400 रुपए का पिज्जा, पैसे मिले उसको 100 रुपए, उसमें क्या मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ठा मिलेगा उसमें है ना। तो फिर वो क्या करता है, वो चीज खरीद पाता है जो उस 100 रुपए में आती है। जैसे कई बार माता पिता से ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते पैसे लेके चले जाते हैं दुकान में, लेकिन माता पिता तो नहीं जाते साथ में दुकान, तो दुकानदार कहता है हाँ क्या चाहिए, वो दिखाते हैं बच्चा छोटा सा, ट्रेनिंग देख रहे हो बचपन से, पैसा लाया हूं कुछ दे दो, कहते क्या चाहिए, तो वो किसी पे भी हाथ रखते, जो उनसे अच्छी लगती है बड़ी सी चीज ये दे दो, दुकानदार ये नहीं मिलेगा और कुछ बोल, कहते ये दे दो, कहते ये भी नहीं मिलेगा, उसका सामने डब्बा रखता है, कहता है ये दे, कहता हाँ इतना सारा मिलेगा, कहते नहीं इसमें से एक मिलेगा। तो बेचारा देखते एक मिला है तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो यहां से ट्रेनिंग हो रही है बच्चे की, क्या पैसे के बदले कुछ मिलता है और कम पैसे से वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे लाने पड़ेंगे। फिर बचपन से ज्ञान होता है उसको, सिक्कों से कुछ नहीं होगा। अब मम्मी कहती है बेटा 1 रुपया ले, नहीं चाहिए 1 रुपया, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कागज चाहिए। तो कागज में भी माँ 1 रुपए का नोट देती, वो लेके जाता फिर दुकानदार दुकार देता है वापिस, चलो 1 रुपया तो है सेम। वो कहता अच्छा ये 1 रुपया होता है, फिर दोबारा घर पे जाता है, फिर उसको थोड़ा बड़ा नोट मिलता है 5 का 10 का 50 का, उसमें कई चीजें आती हैं। तो अगली बार उसको पहचान हो जाती है, रिश्तेदार भी आते हैं, वो देता है, कहता कौन सा दिया दिखाओ, कहता ये बेकार दिया इसने, बड़ा नोट चाहिए। तो फिर उसको वहीं से नॉलेज होती है बचपन से, 2-1.5 साल के बच्चे को नॉलेज हो गए महात्मा गांधी कौन सा अच्छा वाला है, कौन सा कलर अच्छा है महात्मा गांधी का, बचपन से उसको कलर। फिर उसको माता पिता बोलते हैं बेटा थोड़ा सा बड़ा होता ना कि पढ़ ले पढ़ ले, कहता क्यों पढ़ूं मैं नहीं पढ़ता, आवारागर्दी करेगा तो रेडी लगानी पड़ेगी जिंदगी भर, उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, भोग नहीं कर पाएगा। अच्छा तो क्या करूं, पढ़ो, अच्छा पढ़ो क्या करूं, ये पढ़ो। फिर पढ़ता है तो फिर वो अपने 10th के बाद 9th के बाद फील्ड देखता कि कहां जाऊं जिसमें ज्यादा पैकेज मिलेगा। पिताजी भी लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, तब थोड़ा बहुत खा पीते हैं, पहले तो मैं जी लिया माता पिता की कमाई पर, अब वो भी अंगूठा दिखाते हैं बेटा कमाना पड़ेगा। फिर वो करता है पढ़ाई, खूब मेहनत, बचपन से सपने संजोए हुए हैं कुछ कर दिखाऊंगा, और फिर वो इस मेहनत के साथ आगे बढ़ता है और दिमाग में सेट है क्या भोग करना है तो चीज अपनी होनी चाहिए, अपनी चीज बनाने के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए, पैसा ज्यादा पैकेज ज्यादा होने के लिए रैंक अच्छी होनी चाहिए, मेहनत तो सब कर रहे हैं है ना, तो रैंक अच्छी होगी तो पैकेज अच्छा होगा, पैकेज अच्छा होगा तो सैलरी अच्छी होगी है ना, वो सॉरी चीजें ज्यादा खरीद सकूंगा। फिर उसके बाद सब कुछ है, अच्छी शादी, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, अच्छी गाड़ी, तो इस प्रकार वो भोग करना चाहता है। उसको मालूम है कि जो चीज मेरे अधिकार में नहीं है, मेरी पोजीशन में नहीं है, उसकी जगह क्या मिलेगा, ठा मिलेगा। तो फिर वो प्रयास करता है, खूब मेहनत करता है, और इस मेहनत के साथ जब वो देखता है कि मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना कि मुझे चाहिए, जिससे कि मैं सब कुछ कर सकूं, वो सब चीजें ले सकूं, तो वो क्या करता है, फिर 2 नंबर का काम शुरू करता है। 2 नंबर समझते हैं, 2 नंबर मतलब झूठ बोलता है, चोरी करता है, टैक्स बचाता है, इंद्रियां बेकाबू हैं, इतनी सारी असीम इच्छाएं चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, कहता और अन्य और आने दो आने दो और बताओ। तो इस प्रकार वो गलत कर्मों में लग जाता है या बहुत अधिक कर्म करता है। रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं अधिक कर्म वाले के शब्द के लिए, उग्र कर्म, या जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से अचीव की जाती चीजें। हर चीज के पीछे फल की आकांक्षा होती है, यहां से फल आसक्ति शुरू होती है ना, कि मैं ये कर रहा हूं इससे क्या मिलेगा, बचपन से ट्रेनिंग ये है, अब ये कर रहा हूं इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा तब मैं ये ले सकूंगा, तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा। इसलिए बचपन से हमारी ट्रेनिंग होने की वजह से उम्र बढ़ती रहती है और हम फलासक्त होते रहते हैं। हर चीज के पीछे हमें क्या चाहिए, फल चाहिए, जैसा हमने चाहा, जो विचार किया वो मिलना चाहिए, विचारों से भी आसक्त होते हैं। तो इस प्रकार फलाशक्ति होने की वजह से व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, उन फलों से आसक्त होता है, और जब जब वैसा नहीं मिलता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान को दोष देता, भगवान मेरे साथ यूं क्यों किया, मैंने इतनी मेहनत करी रिजल्ट ऐसा क्यों नहीं दिया, मैंने इतनी मेहनत करी प्रॉफिट इतना क्यों नहीं मिला, मैंने ये प्लॉट खरीदा किसी और ने कब्जा कर लिया है ना, जिसे मैंने चाहा वो किसी और से शादी हो गई, फलाशक्ति। तो इस प्रकार व्यक्ति अनियंत्रित अनलिमिटेड इच्छाओं और उनकी पूर्ति के लिए जो है प्रयास कर करके अपना जीवन चलाता रहता है। संघर्ष, दुखी, परेशान, इतना ज्यादा आसक्त कि दुखी रहता है, परेशान रहता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्वायर करना चाहता है। उसको पता है कि जो चीज मेरी होगी उसको मैं एंजॉय कर सकता हूं, किसी और के प्लॉट में जाऊंगा तो मारेंगे, अपना प्लॉट होना चाहिए, किसी और के मकान में जाऊंगा तो पीटूंगा, इसलिए अपना मकान होना चाहिए, हर चीज अपनी चाहिए। तो इस प्रकार ये व्यक्ति इतना संघर्ष करता है इन पोजीशंस को बनाने के लिए, और उनके साथ उन सब चीजों को करते हुए जिसमें मेहनत लगेगी आसक्त हो जाएगा, उन आसक्तियों के साथ वो फिर संतुष्ट नहीं रह पाता, दुखी रहता है, परेशान रहता है, इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि वो उसकी दुख का कारण बन जाता है, उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, उसका एक कारण बन जाता है। वो क्या करा उसने, कहां गलती हो गई उससे, आसक्त हो गया वो किसी भी हर चीज से भोगने के चक्कर में। लेकिन इसके विपरीत देखें, इसके विपरीत जो डिटैच होते हैं, जो अनासक्त होते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं नाहम लिम्बन्ति, मैं भैया कर्म तो करता हूं, मुझे भी समय समय पे आना होता है, लेकिन मैं अनासक्त रहता हूं। अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, आखिरी में बोला यथा इच्छे सी तथा करु, भैया तुमने मेरा इतना टाइम ले लिया लेकिन ठीक है, फिर भी जो करना है वो करो, आपकी मर्जी, दे दिया बस ज्ञान, अनासक्त। भगवान अपने जीवन से दिखा रहे वैराग्य क्या है। अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला भगवान राम का, देखिए इन चीजों से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं। अभिषेक होने वाला भगवान का, अयोध्या के राजा बनेंगे, पूरी पृथ्वी के राजा, अचानक एक कॉल आता है, पिताजी बुला रहे, अब क्या करना बेटा, दो चीजें, एक कल तुम्हारी जगह भरत का होगा और आप जो हैं 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। उफ, अगर भगवान आसक्त होते पूजा लाभ प्रतिष्ठा पद, सैनिको बंद कर दो इनको भी अंदर, निकालो मेरी इस सौतेली मां को घर से बाहर, होना ही था, कल कर लेंगे, रोए नहीं, जिद नहीं करी, ये क्या मतलब है, दो बार मांग लिए, कल के मांग लिए फिर मांग लेते, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कुछ नहीं, मैं ही मिला था क्या हमें सीखने को दुख कितना मिलता है, कई बार हमारे साथ भी होता है, प्लेट में इसको रसगुल्ला मिला, इसको मिला, इसको मिला, अब तो अपना नंबर है, खत्म हो गया, बांटा नहीं आता आपको, तरीका नहीं है, जब कम थे तो आधा था देना था, इधर तो आधा, बस चीज हो रही है पूरी, कल मिलने वाला, लेकिन हम लोग क्या है, ये यहां पर लगता है जोर से लगती है इधर। तो भक्तों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, भगवान राम अपने जीवन से दिखा रहे जो आज्ञा पिताजी, ऊपर से कह रहे 14 साल के लिए जाओ वर्ल्ड टूर, अभी भी नए विवाहित हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार भगवान अपने आचरण से दिखा रहे, और ये हमारे जीवन में होता है, बड़ी सारी ऐसी घटनाएं जिसका कि 100% श्योर होते हैं ये तो होना ही है हमारे साथ, ये तो होना ही है, लेकिन जब वो नहीं होता तो या किसी और को मिल जाता है तो ओहो क्या स्थिति होती है हृदय की, है ना, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए, व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था, लोगों से उधार ले लेके भी लगाया था हर जगह कि बस अब ये बिकेगा, सबके बिक रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, 25 की चीज 40 देती है, एक 4 महीने में 6 महीने में, तो तो लोगों ने कहा कि तुम भी दे दो 20 लाख, 10 लाख तुम दे दो, 30 लाख, 70 की प्रॉपर्टी खरीदी, अभी दे रहा हूं बस अगले हफ्ते तक, इतने प्रॉपर्टी डाउन हो गई। ओह अब क्या करें, बहुत बुरी हालत। इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, जितना हमने खाना है, जितना हमें चाहिए, जितना पहनना है, उतना सबके पास है, आराम से मिल जाता है। लेकिन जीवन में कुछ हलचल होनी चाहिए, जीवन में कुछ मिर्चपना होना चाहिए, मसाला। तो मसाला कैसे लगता है, आसानी से तो कोई बैठेगा नहीं, मसाला को सीधा बैठा उसको मिर्च लगा दो या उस पर, तो वो परेशान हो जाएगा, तो उसको चाहिए कुछ, हिलना चाहता है, डुलना चाहता है, परेशान दिखना है। वो तब होता है जब वो हर जगह अपना हाथ पांव डाल दे, यहां भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अपना जीवन, ये हर देखिए आसक्ति अनासक्ति का चक्कर हर एक के साथ है ना, जब तक हम लोग इस संसार में, तो जो जितना ज्यादा अनासक्त है, लोग कहते हैं जो हमें बड़ा गुस्सा आता है, तो क्यों नहीं आएगा, आ सकते हैं आप चाहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, जो मैंने बोला वो होना चाहिए, है ना। सब आसक्त हैं, सब अटैच हैं, ये आपका हमारे सबकी मुसीबतों का कारण है, सुखी नहीं रह सकते हम। तो कई बार लोग बोलते हैं मुझे बड़ा मुश्किल है, ऐसा कौन होता है बड़ा, आजकल तो ऐसा नहीं होता। तो एक बार हमने एग्जाम्पल देता यहीं पर छोटा सा, कि जैसे हम लोग बताते हैं कई बार एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज से अटैच है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो वो ऐसा है जैसे कि सड़क खराब है, स्पीड ब्रेकर जाता है, खड्डे हर जगह और रखे हैं अपनी सड़क दिल्ली की, कई बार आजकल तो ठीक हो रही है पहले की सड़क, तो ऐसी सड़क पर एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है ऑटो पर, तो क्या होता है उसमें, थोड़ा सा भी खड्डा आएगा तो ठां की आवाज आती है और व्यक्ति उछलता है अंदर, है कि नहीं। तो छोटा सा प्रॉब्लम भी उसको जोर का लगता है, और अगर उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी शॉकर वाली 25-30 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी, BMW समथिंग, उस पे जा रहा है, वही रोड है, खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो जोर का झटका धीरे से लगता है, लेकिन धीरे से लगता है ना। सड़क वही है, खड्डे, स्पीड ब्रेकर वाली, और इसी रोड के ऊपर डिवोटीज आ रहे हैं ऊपर से प्लेन पर, उसको कैसा लगता है, कुछ नहीं लगता, आराम से बैठे हैं, सर और क्या लेंगे, नीचे हरे कृष्ण, वो आराम से जा रहा है। ये हम मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं संसार में, कर्मों से, कर्मों के फलों से भोगना चाहते हैं, हर चीज में वो चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसा हो, भोग मेंटालिटी, तो वो सब लोग ऑटो पे ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां का छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे प्रॉब्लम, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जो वो करना चाह रहा वैसा नहीं हो रहा, उसको फल उसके हिसाब से नहीं मिल रहा जिस प्रकार कर्म किए, तो वो उसको झटके दे रहे हैं जोर जोर से, ठा ठा ऐसे करके। और जो अब गीता पढ़ना शुरू कर दिए हैं, है ना, भक्तों के संग में आ गए हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के वृतांत को सुन चुके हैं, उनके जीवन को, तो वो किस पे चल रहे हैं, BMW भी चल रहे हैं, अभी भी वही सड़क है, स्पीड ब्रेकर और खड्डे भी वही हैं, लेकिन वो आते हैं लगते हैं, लेकिन फील नहीं होते ज्यादा, है ना, फील नहीं होते ज्यादा। तो जो ऑटो पे चल रहे हैं वो BMW वाले को देखता है, तो कहता है कि हाँ ऐसा जीवन जिया जा सकता है, है कि नहीं, जो बड़ी चीज छोटी लग रही है, लेकिन हम दूसरे ढंग से देखते हैं, वो कहते यार मैं ऑटो में चल रहा हूं, ये BMW चल रहा है, इतनी मेहनत करता हूं, इतना काम करूं कि कल को मैं भी ये दूसरा ढंग से देखने का, वो और आसक्त हो जाता है उसमें। और एक है प्लेन में जो डिवोटीज, सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज, भक्ति में उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ऐसे लोग ऐसे स्तर पर हैं जो प्लेन पर चल रहे हैं, सड़क नीचे है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनकी मानसिकता ऐसी होती है। तो हमें किस स्तर पर आने का प्रयास करना चाहिए, अभी किस पे चल रहे हैं हम, हाँ कोई हो सकता ऑटो पे हो कोई, हाँ तो प्रयास करना है भगवान के निज जीवन के आचरण से। चैतन्य महापुरुष का श्लोक जो उद्धृत किया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भाई आप वैराग्य की विद्या सिखाई चैतन्य महापुरुष ने अपने जीवन से, सब कुछ त्याग किया, डिटैचमेंट का जो सुख है ना, अटैच होकर तो लिमिटेड चीजें हमारे पास होती हैं, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, बस एक वाइफ सेवा कर रही है, एक दो बच्चे अपने, है ना। लेकिन डिटैच होकर पूरा संसार आपका, 56 भोग आपके, भगवान की सारी क्रिएशन है, जहां भी जाएंगे जितना जो जितना विरक्त है उसका उतना गुणगान होता है, उसको उतना महान समझा जाता है, उसकी उतनी सेवा होती है। क्या गुण है उसके पास? वैराग्य, डिटैचमेंट का, उतना सुखी, उतना सेटिस्फाइड, और जो जितना आसक्त वो उतना परेशान, उतना दुखी। तो इस श्लोक में भगवान स्वयं अपने जीवन के आचरण से और स्वयंभू मनु जो हम बता रहे हैं कि इसलिए इनका अनुसरण करो, भगवान के इस चीज का, उनके विषय में सुनना, ज्ञान के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इन आसक्तियों को काट सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए, और इससे हमारी आसक्तियां टूटेंगी, खत्म होंगी, ठीक है कि नहीं, और तब हम आनंद और संतोष भी महसूस करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है? हाँ जी माता। शून्य करना है, टफ है हाँ, तो इसलिए तो पूरा लेक्चर दिया हमने, आखिरी में यही बताया कि हमें उस स्तर पर आना है, अगर हम नहीं आ रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, हर बात पे परेशान रहिए, ऑटो में ट्रेवल करते रहिए, ठां ठां टकरे खाते रहिए। देखिए ट्रैवलिंग तो करनी है सबको, है कि नहीं, अपनी मंजिल पे सबने पहुंचना है, समय लगना है सबका, लेकिन अब किस प्रकार का व्हीकल आपने इस्तेमाल किया, किस तरह की मेंटालिटी लेकर चल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंजिल है, आपको जाना है, आपके पास ऑटो में भी जा सकते हो, बीएमडब्ल्यू में भी जा सकते हो, और बाय प्लेन भी जा सकते हो। अगर ऑटो में जाते हो आसक्त होकर हर चीज से, तो वो आपको दुख देगी, परेशान करेगी। तो ज्ञान के आधार पर काटो इसको, ज्ञान, निष्काम कर्म, है ना, निष्काम कर्म करें या कृष्ण भावना भावित कर्म करें, तो हम लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और ये करने के लिए जो शक्ति मिलेगी वो हरिनाम से मिलेगी, भक्तों के संग से, भगवान के विषय में सुनकर। तो इन श्रवण से ही तो सारा हमारा जो है अनासक्त होंगे हम लोग संसार से। तो मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान भी भगवद्गीता में रेफरेंसेस देते हैं, इससे पहले भी कई लोगों ने ये सब किया है और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। अपना बोलने के बाद रेफरेंसेस भी देते हैं कि कई ऋषि मुनि ने ये सब किया। क्यों बोलते हैं? ताकि आप उनको भी देखो, उनका जीवन देखो। क्या महाजना गता सुपन था बोला ना, महाजना ये गता सुपन, महाजन लोगों ने काम करके दिखाया इस पर, तो उनके जीवन को पढ़ो, उनके तरह उन साधना को पालन करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमारी गलती है, हम पढ़ा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, ज्ञान से दूर हैं। बचपन से बच्चा जब आंखें खोलता तो सारी दुनिया भर की किताबें होती हैं उसके सामने, भगवत गीता थोड़ी रखते हैं उसके सामने, भगवत गीता रख देते तो फिर काम हो जाता उसका। बचपन क्या, हम भी कौन से बहुत बड़े हो गए है ना जी, हम भी अभी बच्चे ही हैं सबकी, हाँ बच्चों की भी ठीक है, हमारी भी यही स्थिति है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आचरण से सिखाओ, आगे बोल रहे हैं कि जब हम लोग अपने इस तरह के कर्म करेंगे अनासक्त होकर, तो जो दूसरा जन समुदाय है जो आसक्त होकर काम करता है, वो देखेगा मैं काम करता हूं इतना परेशान रहता हूं, ये भी काम करता है अनासक्त भाव से इतना आनंद में रहता है, चक्कर क्या है, मुझे दुख आया मैं परेशान हूं, इसे दुख आया इसने सहन कर लिया, क्या करता है ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम इस प्रकार का आचरण पेश करोगे तो ये लोग आपसे आसक्त होकर सीखेंगे, कहां जाते हो, इस्कॉन जाते हो, क्या करते हो, अजमाला करते हो, क्या पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, ओहो यही कारण है, तो फिर वो भी सीखेंगे। है कि नहीं? हाँ, ठीक है, इसीलिए हम ये शिक्षा दे रहे हैं ताकि जो अब सीख रहे हैं वो आने वाली जनरेशन्स को सिखाएं या अपने घरों में जो संतान है उनको सिखाएं, है ना, वातावरण दे। और किसी को प्रश्न है? ठीक है।